भारती के अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 135। ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम नमः सिद्धेव्य, ओम
शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, त्रिभुवनतिलकं देवं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं, वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी।
यह आचार्य कार्तिकेय द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उसमें आज हम बोधि दुर्लभ भावना की आखिर की जो गाथा है उसको देखेंगे। कल तक हमने उसको देखा था। हम पेज नंबर आए हैं 17, इसमें पहला पैराग्राफ हुआ है। अभी आखिर का जो पैराग्राफ है उसको हम देखेंगे। देखो क्या लिखा, निगोद माथी निकली, ये नीचे से छठी लाइन है। वो निगोद माथी निकली ऊपर कहा अनुक्रम थी, सर्व दुर्लभ थी पन दुर्लभ जानो। यानी जो अनुक्रम से हमने जो बताया था, क्या कि पहले में पहले तो नित्य निगोद में से बाहर निकलना आदि से चालू करते हुए कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, यानी बोधि प्राप्ति, यानी सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की जो प्राप्ति है वह दुर्लभ में से दुर्लभ बात है। बड़ी तेमापन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी प्राप्ति तो अत्यंत दुर्लभ समझो, तेने पामीने भव्य जीवे तेनो महान आदर करवो जोइए। वसी निगोद चीर निकसी खेद सही धरणी तरुणी बहु, पवन वोद जल अग्नि निगोद लही जरण मरण सहु, लट गिंडोल उठकन मकोड़ तन भ्रमर भ्रमण कर। और है क्या? अच्छा, जल विलोल पशुतन सुकोल नभचर सर ऊर पर, फिरी नरक पात अति कष्ट सही कष्ट कष्ट नर तन महत, तहम पाय रत्नत्रय चिगद जे ते दुर्लभ अवसर लहत। अभी उसका अर्थ दिया ही है। क्या कह रहे हैं, निगोद माथी निकली ने त्रसपणु पामु दुर्लभ चे।
यहाँ पर लिखा ना वसी निगोद चिर, वो चिर ने क्या
अनंत काल, लंबा काल,
वो चिर हस्व चाहिए, चिर यानी वस्त्र और चिर यानी लंबा काल,
चिरकाल,
चिरकाल जिसको कहते हैं, अनंत काल, चिर हस्व चाहिए। तो वसी निगोद चिर यानी नित्य निगोद में रहकर, निकसी वहां से निकलकर, खेद सही दुख सहन किया किसमें, हाँ धरणी तरुणी, तरुणी का अर्थ क्या है, तरु यानी वृक्ष, तरुणी यानी तरु के वृक्षों के, यानी पृथ्वी का एक, धरणी यानी पृथ्वी, तरु यानी वनस्पति, पवन यानी वायु, जल अग्नि, और निगोद यानी इतर निगोद। पहले चिर निगोद लिया, अब ये इतर निगोद लिया। लही जरम मरण, जरन मरण सहु, बहुत बार जन्म मरण किया उसने। लट गिंडोल उटकन मकोड तन भमर भ्रमण कर, द्विइंद्रिय तीन इंद्रिय और चतुर इंद्रिय के कुछ जीवों के नाम लिए हैं।
लट यानी ईयर गिंडोल ये कोई अन्य होगा उटकन यानी
हाँ तीन इंद्रिय है उटकन मक
नहीं 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 उटकन मकोड़
लट मकोड़ा
वो भी तीन इंद्रिय वाला
तीन इंद्रिय ब्रह्मर चौ इंद्रिय
यानी चौ इंद्रिय
उनमें भ्रमण करके
उटकन यानी होगा
कीड़ी कीड़ी हाँ
उटकन यानी मेरे हिसाब से माकड़ जिसको बोलते ना आप लोग
नहीं तो माकड़ हाँ। अच्छा उटकन
नहीं समझ
खटमल हिंदी में खटमल
और गुजराती में माकड़ बोलते हैं और मराठी में माकड़ का अर्थ बंदर होता है घबरा ना मत सब का भाषा खिचड़ी हो गया इधर हाँ अब आगे
जल विलोल पशु तन सुकोल नभचर सरोवर पर अब ये पंचेंद्रिय भी हुआ तो उसमें नभचर सलचर जलचर वगैरह हुए यानी जलचर फिर नभचर और थलचर सरोवर पर सरपटना हाँ रेंगने वाले प्राणी ऐसा लेना जल विलोल में जलचर होंगे
जलचर
जल में रहने वाले फिर नरक पात अति कष्ट से
यानी नरक
उसमें नरक में गिरा गिरा यानी वहाँ जन्म लिया अति कष्ट सही अत्यंत कष्ट सहन किया वहाँ पर कष्ट कष्ट नरतन महत बहुत दुर्लभ से दुर्लभ ऐसे बहुत कष्ट से यानी बहुत रेयरली नरतने ने मनुष्यपना प्राप्त हुआ मनुष्य शरीर धारण किया तह पाए रत्नत्रय चिगद जे वहाँ जो रत्नत्रय प्राप्त करते हैं और वो उसमें स्थिरता करते हैं
मुश्किल से
हाँ ते दुर्लभ अवसर लहत
उनको दुर्लभ अवसर की प्राप्ति होती है लहत लहत यानी प्राप्त
होते हैं
निगोद माथी निकली ने त्रसपनु पामु दुर्लभ छे ते माय पंचेंद्रियपनु संगीपनु मनुष्यपनु दीर्घ आयु पंचेंद्रियोनी पूर्णता ऊंचू कूल धर्मनी बुद्धि सत्समागम ए बधुई मळवू दुर्लभ छे छता ते अपूर्व नथी इसका अर्थ क्या है ऐसी संधि तो इस जीव के अनेकों बार कितनी बार अनंत बार मिली है ये अपूर्व नथी एम के छे ते तो पूर्वे मळी गयू छे पण आत्मानु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पामवू ते अपूर्व दुर्लभ छे एवो अवसर क्यारे आवशे ऐसा बोलते है ना श्रीमद जी तो वो तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि कब बनूंगा उसके लिए कह रहे हैं पर यहाँ तो वही सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं वो कब अपूर्व दुर्लभ छे ना अनंत कारणा भव भ्रमण थी उगरवानू टाणू यानी समझे ये गुजराती है भाई सुनो अनंत काल जो भव भ्रमण चल रहा है यानी जन्म मरण ये एक भव से दूसरे भव दूसरे ये भव भ्रमण थी उगरवानू टाणू यानी अपॉर्चुनिटी संधि अवसर और उगरवानू ने उससे बाहर निकलने की आपको ये मालूम है वर्लपूल रहता है इधर का नहीं अपना घर में मशीन है उसकी बात नहीं है वो पानी में जो होता है तो उसमें कोई नाव अटक जाए तो वहीं के वहीं घूमे उसमें से बाहर निकलना जैसा मुश्किल है वैसा यहाँ कह रहे कि ये भव भ्रमण जो चल रहा है एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ऐसा जन्म मरण तो उसमें से बाहर निकलना उगरवानू टाणू आ मनुष्य भाव मा छे तेमा जो आत्मानी दरकार करी नहीं तो फरी आवो अवसर मळवो महा दुर्लभ छे। अभी हम जरा सोचते हैं कि अभी हमारे लिए कौन सा ऑब्स्टेकल अभी है मनुष्यपना प्राप्त है घर में आगे की भविष्य की साथ साथ पीढ़ी खाए पिए बिना काम किए इतना पैसा पड़ा है ना हाँ बोलते पंचेंद्रिय है और जैन धर्म का समागम भी मिला है सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप भी समझने की हमारी कोशिश चल रही है। अब कौन सी बात बाकी है? कोई ऑब्स्टिकल बाकी है क्या कि भाई गरीब है, खाने की तकलीफ हो रही है, रहने के लिए घर नहीं है? कौन सी बात रह गई? पेट भी पूरा भरता है, पर जब तक पेट ही नहीं भरती इस जीव को संतोष नहीं है और यहाँ वहाँ 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 घूमता है। तो कैसे आवू मनुष्य बनु है, यानी विद ऑल दिस अवेलेबिलिटी, इतना होते हुए भी अगर हम अपने स्वभाव को, स्वरूप को समझने का यत किंचित भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब उसकी प्राप्ति होगी? क्या कहा? देखो ये तो आनंद काल में घनी वार मड़ी गयो छे, एम के जी अपूर्व नहीं। तो कहे के फरी आवो अवसर मळवो महा दुर्लभ छे, माटे आवी दुर्लभता समझी ने आ मनुष्यपनाम चैतन्य स्वभाव आत्मा ना महा आदर पूर्वक प्रयत्न करीने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी आराधना करवी एवो श्री सद्गुरु नो उपदेश छे। ए प्रमाणे बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा एटले भावना समाप्त थई। अब आगे की 12वें नंबर के धर्मानुप्रेक्षा, आप क्या कह रहे हैं? एक इंद्रिय में से, हाँ हाँ, देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ कहाँ होगी, कौन सी गतियों में, कौन सी गतियों में, तो फिर प्रश्न का उत्तर आ गया ना आपके। हाँ हाँ, देव आके देंगे, कोई सम्यक दृष्टि देव आके देंगे, वहां तीन नरक तक तो जाएंगे ना। पॉसिबिलिटी सभी है ना भाई। हाँ जी, आपका कहना ऐसा है कोई ऋणानुबंध होगा तो ही आएंगे ना, ऐसा नहीं। अभी मान लो कि हम आपको समझा रहे हैं, आपके बाजू में ये बैठे, इन्होंने भी सुन लिया, ये तो भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मतलब हम आपके लिए आए हैं और वहां दूसरा कोई सुनता होगा। जैसा अभी देखो, अभी हमने तो देखा ना शिविरों में क्या चल रहा है, जरा देखेंगे तो सही। ऐसी टेंडेंसी से कोई आते हैं तो बोलते हैं यार वहां फोकट में खाना मिलता है, क्या तकलीफ है, जाने आने का खर्चा, रहने का फोकट है, चलो जाएंगे। कोई बोलता है अरे यहाँ इसमें जिसके घर में उपवर कन्या हो या उपवर लड़का हो तो वो लोग सोचते चलो कोई देखेंगे मिलेंगे, अरे यहाँ तो सारे पंडित लोग आते हैं, कोई अपने हाथ में आ जाएगा। यानी विथ व्हाट रीजन, कोई भी कारण से वहां आए और बाय चांस ये बात कान पर पड़ी, अरे ये कोई जुदी बात है। अभी दुनिया की छोड़ो ना, हम जो गए थे तो केवल हमारे माँ बाप के प्रति हमारे जी कृतज्ञता थी। कृतज्ञता समझते ना, कृतज्ञता यानी क्या, उन्होंने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उसका रीपेमेंट करने के लिए। यानी भाई उन्होंने हमको इतने बहुत डिफिकल्ट आर्थिक अवस्था में अच्छी तरह से संभाला, अच्छी तरह से हमको अपॉर्चुनिटीज दी, तो हमारा एक कर्तव्य होता है कि जैसे माता पिता की इच्छा हो वैसा कर, इसलिए उनके साथ हम यात्रा में गए और वहां बात सुनी तो दिमाग फिर गया, फिर गया ने ठिकाने पे आया कि ये हम क्या समझते हैं। जैन दर्शन को कभी हमने समझा नहीं था, जाके अरे भगवान के दर्शन करे, ओहो हो हो बहुत बड़ा काम किया ऐसा। तो वैसे देखा जाए तो हमारी भी पूरी पूरी पार्टी कोरी थी, यानी हमारे को ऐसे भूसा नहीं भरा था कि ऐसा है वैसा है, इसको निकाल के इसको अंदर डालो, इसलिए ये बात जल्दी एक्सेप्ट हो गई। वहां तो जो कुछ बोलना है तो सबके लिए बोल रहे थे, हमारे लिए थोड़ी बोल रहे थे। ऐसा हो सकता है, अभी आपको कैसा बताऊं मैं, जयपुर में हमने ऐसे देखे हैं, ये लड़का आया था एक बाय बर्थ सिंधी, वो कहा कि मुझे एडमिशन चाहिए, बोले हम जैनियों के अलावा किसको एडमिशन नहीं देते। तो वहीं के रहने वाला था, तो उसने कहा मैं बाहर से बैठूंगा लेकिन मैं परीक्षा जरूर दूंगा। लोगों ने समझा उधर के, ये क्या है, बैठने दो ना, अपना क्या जाता है, यहाँ का तो खाना नहीं खाएगा, बैठेगा परीक्षा देगा, जाने दो। ही केम फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन फर्स्ट ईयर, तो फिर दूसरे साल उसको एडमिशन ले रहा है। अभी वो पंडित होकर हर जगह घूम रहा है। बोलो, उतना ही नहीं तो उसकी छोटी बहन, उसके माता पिता सभी रोज वहां प्रवचन में आते, ये बता नहीं सकते किसका क्या होना है। ये तो जिसके हम कहेंगे कि उपादान शक्ति, उपादान जागृत हुआ है कहो, या काल पाक्यो छे एम कहो, बस निमित्त सहज मिल जाते भाई। तो इसलिए आपका जो कहना है कि भाई उनके लिए ऋणानुबंध होंगे तो आएंगे क्या, नॉट नेसेसरी। वो तो ऐसा कहेंगे भाई आपके पुण्य का उदय था, आपके भी पुण्य का उदय था, दोनों ने सुन लिया। पुण्य का उदय थोड़ी काम करता है, सुनने के बाद जो निर्धार होता है, निर्णय होगा, दैट इज हेल्पफुल। देखो देखो, अभी मैं ये विषयांतर हुआ है इसलिए थोड़ा सा एक और एक सब लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो है उसमें मैंने ऐसे बताया था कि यह जीव ने अनंत बार तीर्थंकरों के समोचरण में होके आया, वो क्योंकि अनंत भव परावर्तन किए ना। तो मेरी बेटी रीना जो है वो सुनती है, तो उसने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा कि जैसा अनादि से नित्य निगोद में जीव है, वैसे अनादि से अभी तक किसी जीव को पंचेंद्रिय पर्याय मिली नहीं है, सुनो, तो वो कहाँ क्या कहते हैं समोचरण में जाएगा और वहां सुनेगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने उसके ऊपर बहुत सोचा, अभी तक मुझे यथार्थ उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा देखो, यहाँ जो स्टेटमेंट्स होते हैं वह तो मेजॉरिटी लोगों के अपेक्षा से होते हैं, अब इंडिविजुअली एक 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 व्यक्ति की बात तो नहीं हो सकेगी, यानी एक जीव की अपेक्षा से। हाँ बरोबर, त्रस्त जीवों का भी हमने देखा है 2000 सागर वर्ष, तो त्रस्त पर्याय में मनुष्य की बात होगी ही, ऐसा है क्या, ऐसा कहीं देखा है क्या, ऐसा मैं कहता हूँ। देखो उसने बहुत विचार में डाला मुझे, अभी तक मैंने इनसे भी पूछा था मेरे ख्याल से, लेकिन उसका सही उत्तर, यानी हम तो इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं नहीं उसको पंचेंद्रीय पर्याय तो मिलेगी ही मिलेगी। अभी नारकी मिला हो, मैं तो कहता हूँ वो थोड़ी आने वाला है, और हर पंचेंद्रीय तीर इंच थोड़ी आते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा कि नहीं। अभी उसका तो तीर्थंकर के समोचरण में आएगा कि नहीं वो बात ही नहीं है, उसको पंचेंद्रीय पर्याय नहीं मिली, ऐसे भी कोई जीव होंगे क्या नहीं, ऐसा उसका प्रश्न था। अब आगे की बात बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन वो ऐसा सामने टीवी अपना टेप लगा के बैठ के सुनती है, ऐसा कभी नहीं करती, वो यार रसोई करेगी हा? और ये सुनेगी, बाकी काम करेगी। लेकिन वो तो ऐसा कहते कि आपके यहाँ जो प्रश्नोत्तर चलते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका जवाब मेरे पास नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी उत्तर दूं उत्तर दूं। यानी मेरी बेटी इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी जीव है कि जो हमको भी जरा सा डब्बी में डाल दे। हाँ आप कुछ बताने वाले थे, चलो आगे चलेंगे। अभी भाई आपके प्रश्न का उत्तर मिला, हमने इतना ही कहा, हमने यहीं कहीं पढ़ा नहीं है कि पंचेंद्रिय हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक के काल है, त्रस्पर्या के काल भी करोड़ों पूर्व की बताई थी, अपना विकलेंद्रिय की,
विकलेंद्रिय
की, वैसे पंचेंद्रिय का भी इतना ही काल होगा, ऐसा भी है, लेकिन
अकेले हाँ साहब, अकेले पंचेंद्रिय का काल मालूम है, अकेले विकलेंद्रिय का मालूम है, परंतु यहाँ अब वो कब नित्य निगोद से निकला है, कितना काल बीत गया है, उस पर भी निर्भर है। हो सकता है कि उसने अभी तक नहीं प्राप्त किया
हो। अभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां से निकला, पंचेंद्रिय में आया नित्य निगोद में से और मोक्ष चला गया, तो उसने कहां सुना है। अरे भाई वो बात थोड़ी चल रही, काल कितना गंवाया है उसका काउंटिंग चल रहा है। लेकिन ऐसा कहीं अभी तक तो हमारे ज्ञान में नहीं आया है कि बिना पंचेंद्रिय का कोई जीव अनादि से एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय में आया है, पंचेंद्रियपना नहीं पाया, वो भी संगी पंचेंद्रियपना वगैरह वगैरह। आपके भी किसी के ज्ञान में आ जाए कहीं पढ़ने में तो बता देना, अच्छा रहेगा ना, क्योंकि हमको सोचने के लिए कोई मैटर तो चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आ धर्मानुप्रेक्षामा जैन दर्शन नो सार गोठवी दिदो छे सम्यक दृष्टि केवु वस्तु स्वरूप विचारे छे ते पण आमा वर्णव्यू छे। कौन सोचता है कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, तो वो जैसा सोचते हैं वैसी सोच अपनी भी हम बनाएं, इसलिए वो बताने वाले। धर्म अनुप्रेक्षा नु वर्णन करता पहला सर्वज्ञ देव नु स्वरूप बतावे छे, केम के धर्म नु मूल सर्वज्ञ छे, सर्वज्ञता ते आत्मा नु पूर्ण स्वरूप छे, आत्मा नो ज्ञान स्वभाव छे, तेमाथी ज्ञाननी परिपूर्ण दशा प्रकटे छे, तेनु नाम सर्वज्ञता छे। सर्वज्ञता बाहर थी आवती नथी, क्या कहा, सर्वज्ञता जो है तो उसका स्वभाव ही है ना, स्वभाव कहां से बाहर से आएगा। जेने सर्वज्ञ ने न मानिया तेने आत्मा ने न मानियो, ज्ञान गुण ने न मानियो, पर्याय नु परिपूर्ण सामर्थ्य न मायनु, सर्वज्ञ कहेला शास्त्रो न मायना। एक गलती कर बैठता है क्या, तो कितनी गलतियां हो जाती हैं। जैसा हम सुनते हैं पढ़ते हैं कहते भी हैं कि ये निगोद जो है वह एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव है अवधारिक शरीर में, और ऐसे सब आलू प्याज आदि जो कोई मतलब जिसको हम कहेंगे कंदमूल आदि में ये पाए जाते हैं। तो लोग प्रश्न पूछते किसने देखा, हमने तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, ये लगाया, वो लगाया, दूरबीन लगाया, जो कुछ होता होगा उनका, किसने देखा, ये क्या बात करते हो तुम। तो उसने किसको नहीं माना, सर्वज्ञ को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, ये लिस्ट कितनी बड़ी अच्छी दी है। जेने सर्वज्ञ ने न मानिया तेने आत्मा ने न मायनो, ज्ञान गुण ने न मायनो, पर्याय नु परिपूर्ण सामर्थ्य न मायनु, और उसके आगे सर्वज्ञ ने कहेला शास्त्रो न मायना, आत्मा ना ज्ञान स्वभावना अवलंबने राग ने अल्पज्ञता नो नाश करी ने सर्वज्ञ दशा प्रकटि ते सर्वज्ञ देव धर्म नु मूल छे। जेने सर्वज्ञ नी प्रतीत नथी तेने आत्मा नी प्रतीत थती नथी ने तेने सम्यक दर्शन थतु नथी। क्या कहा, जेने सर्वज्ञ नी प्रतीत नथी, प्रतीत ने क्या श्रद्धा, तेने आत्मा नी प्रतीत नथी ने तेने सम्यक दर्शन थतु नथी। ऐसा कहां लिखा है मिली भाई, आपने कभी पढ़ा है क्या ऐसा, सुशीला बेन आप बताएंगे। हाँ जोर से बोला उन्होंने, हाँ आप क्या कहते हैं, क्या लिखा है वहां। हाँ अच्छा, और आप क्या कहते हैं, सुनो आपका सही है, कोई तकलीफ नहीं है, पर उसमें देव गुरु शास्त्र तीनों की बात ली है, लेकिन यहाँ तो केवल सर्वज्ञ नहीं प्रतीत नहीं ऐसा लिखा है। हाँ तो उन्होंने बताया जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयत्ते हिम। ये कहाँ लिखा है मिली भाई? हाँ शाबाश शाबाश, अभी गाड़ी लाइन पे आए। उन्होंने पूरा बताया था प्रवचन सार गाथा 80 करके हुँ? और मैंने उसका पहली लाइन बताई, बाकी तो आपको याद है हुँ? तो वहाँ लिखा है कि जो सर्वज्ञ को जानता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, यानी उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। यही बात कह रहे हैं, जेने सर्वज्ञ नहीं प्रतीत नहीं तेने आत्मा नहीं प्रतीत नहीं तेने सम्यक दर्शन थतु नहीं। तो जेने सर्वज्ञ नहीं प्रतीति छे तेने आत्मा नहीं प्रतीति छे ने तेने सम्यक दर्शन थाय छे। यहाँ निगेटिव में लिखा, वहां पॉजिटिव में लिखा, एक ही बात है ना भाई। सर्वज्ञ नहीं जानता अल्पज्ञता के राग द्वेष सर्वज्ञ ने नहीं तेथी मारा आत्मानु पण ते स्वरूप नहीं। ते स्वरूप एटले कयुं राग द्वेष स्वरूप मारू नहीं एम राग अने अल्पज्ञता में हे बुद्धि थई ने। किसमें किसमें से निकालती तुम्हारी बुद्धि? राग और अल्पज्ञता, उसमें कैसी बुद्धि होनी चाहिए छोड़ने लायक? तो मैं कैसा बनूं? वीतराग और सर्वज्ञ। हे बुद्धि थई ने परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव में उपाधि बुद्धि थई तेनु नाम धर्म छे। धर्मनु मूल सम्यक दर्शन छे। क्या लिखा? पूछा, समझ में आया? धर्मनु मूल सम्यक दर्शन छे एम क्या लख्यू छे? हाँ वो उसमें लिखा है
दंशन मूलो धम्मो है ना। ये तो अष्टपाहुर की बात होगी।
हाँ और उसमें चारित्र खलु धम्मो है।
चारित्र खलु धम्मो
सातवें नंबर की गाथा में
चारित्र धर्म है और उसका मूल सम्यक दर्शन है।
दोनों ही बात कुंद कुंद आचार्य ने लिखी है, इतनी बात नक्की है। क्या कहा? धर्मनु मूल सम्यक दर्शन छे, यानी जब तक हमें आत्मानुभूति कहो या सम्यक दर्शन कहो नहीं होता है तब तक धर्म की शुरुआत भी नहीं है। चाहो करोड़ों अब जो रुपए का दान क्यों न दो, हजारों दिनों का उपवास क्यों न करो, वो धर्म नहीं है। धर्मनु मूल सम्यक दर्शन छे, पण ते सम्यक दर्शन सर्वज्ञनी प्रतीत वगर थतु नथी। माटे आई एम कहूं के धर्मनु मूल सर्वज्ञ छे। देखो जबी जबी हम पढ़ते हैं ना भाई, तो हमें तो पहले में पहले सर्वज्ञ के स्वरूप को समझना आवश्यक है। तो सर्वज्ञ का स्वरूप समझने के लिए पहले हमें ये नक्की करना पड़ेगा कि ये सर्वज्ञ बने कैसे, सर्वज्ञ बनने का कौन सा मार्ग या विधि उन्होंने उसका अवलंबन लिया। अरे वो मुनि बने थे। अच्छा मुनि बन के क्या क्या वो श्रेणी चढ़े थे, तो मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये ऐसा नीचे नीचे आता है, पहले उनको सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना कुछ बात नहीं है, हेलमैन। तो फिर मुनियों का स्वरूप भी समझना चाहिए। ये सारी बात कहाँ समझेंगे हम? अरे भाई शास्त्र उपलब्ध है, तो जिनेन्द्र कथित जो शास्त्र है जिसको सत शास्त्र कहेंगे हम, केवल नाम ऊपर लिख गया सत शास्त्र तो सत शास्त्र नहीं होता है। ऐसी बात बनी थी एक समय, किसी के घर में पूजन था तो अभी मंदिर जी से मूर्ति नहीं मिली, तो बताया गया उनको कि भाई तुम जिनवानी स्थापित करो, तो उन्होंने जिनवानी संग्रह लाया। जिनवानी संग्रह यानी क्या है मालूम है आपको? जिनेन्द्र भगवान की पूजने जिसमें लिखी है ऐसा जिनवानी संग्रह, तो उन्होंने उधर रखा हुआ। अरे मैंने कहा वो जिनवानी नहीं, नहीं नहीं लिखा है ना उसके ऊपर, केवल लिखने से वो जिनवानी होती है क्या? समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? जिनवानी लिखा आपने अंदर क्या बोलते, सफेद सफेद नमक रखा और ऊपर लेबल लगा दिया शक्कर, तो लेबल लगाने से अंदर का नमक शक्कर हो जाएगा कि नहीं? ख्याल में? तो यहाँ जिनवानी कहने से जिनेंद्र भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में बात की है, जो वीतरागता की पोषक है, ऐसी वाणी को जिनेंद्र वाणी कहेंगे या शास्त्र कहेंगे, जो हमारे गणधर आचार्यों ने उनकी रचना की है। तो ऐसे तीन का स्वरूप हमें जानना बहुत आवश्यक है, उसके बगैर आगे की चाहे जितने पढ़ो ना, तुम कितना पढ़ोगे आप, 11 अंग और 9 पूर्व, लेकिन इन तीन चीजों को हम नहीं सही रूप से समझेंगे मानेंगे तो आगे बात ही नहीं बनेगी। क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, भाई सम्यक दर्शन तो करना है, तो भैया उसके लिए निमित्त भी सही होते हैं और वो होने चाहिए और वो सहज होते हैं, यानी उसके लिए हमारे प्रयत्न तो होंगे कि हमें पहले स्वरूप समझना चाहिए। इसलिए यहाँ तो पहले गुरु की बात, देव की बात की, सर्वज्ञ की बात की, अब उसके साथ साथ हमने जो देखा, आपने बताया ना कि चार बातें बताई है सम्यक दर्शन के लिए, कि देव गुरु शास्त्र का यथार्थ सिद्धांत, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति, स्वपर भेद और आत्मानुभूति। तो ये सारी चारों ही बातें एक के बाद होती होगी कि नहीं, साइमल्टेनियसली एक साथ युगपत होते हैं। तब यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, एम कहू के धर्मनु मूल सर्वज्ञ चे, सर्वज्ञ ने जाण्या तेने आत्मानो परिपूर्ण स्वभाव जानियो, सर्वज्ञ थवानी प्रतीत थई एटले अल्पज्ञता ने रागनो ते ज्ञाता रह्यो पण तेनी रुचि न रही। ये किसको पॉसिबल है? धर्मी जीव को। क्या कहा? अल्पज्ञता जे छे अने राग जे छे ते मारा ज्ञान नो ज्ञेय छे एम ते माने छे, ज्ञाता रह्यो पण तेनी हवे रुचि न रही, एटले राग करवानी रुचि न रही, राग आवतो नथी एम नथी, राग करे हो सुबह राग खाए आवे पण एनी रुचि नथी। देखो ये किसकी बात कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव के। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये बाह्य में ऐसा हम राग करेंगे या आचरण करेंगे, शुभ भाव करेंगे, तो हमारा ये पद नक्की हो गया, तो कि उससे नहीं होगा, यानी रुचि क्या है? और जिनको ऐसा लगता है कि शुभ भाव करने से ही मेरा फायदा होगा, वही मुझे तारेगा, संसार से उगार देगा, निकाल देगा हमें, तो वह मान्यता ही खोटी है, तो मिथ्यात्व से हटेगा नहीं। क्या कहा देखो अभी, जे धर्म श्रुत ज्ञान मा जणाय ते केवल ज्ञान मा न जणाय एम केम बने? अहो सर्वज्ञता तो आत्मानो स्वभाव छे ते शून जाने, यानी बधु जाने। सर्वज्ञता नक्की करे तो, यानी सर्वज्ञता का स्वरूप नक्की करे तो पदार्थों में त्रण कारणी पर्याय क्रमबद्ध थाय छे, ए पण नक्की थाय छे, थई जाय एटले पोते ज्ञाता दृष्टा रही जाए। माटे पहला अहीं धर्मना मूल तरीके सर्वज्ञ ने वर्णवे छे, आगळ धर्मानुप्रेक्षानुं निरूपण करे छे, त्यां धर्मनुं मूल सर्वज्ञ देव छे तेने प्रकट करे छे। अरविंद भाई, कि जब हमारा इसका थोड़ा बहुत अभ्यास हो गया और हमें ऐसा एक अच्छा अवसर मिला कि तुम प्रवचन में जाते रहो, ये भी एक बहुमान है ना भाई, जिनवानी की सेवा करने को ऐसा चांस मिले, और इससे बढ़िया क्या है। तो मैंने बहुत सोचा, और जब से मैं पहले ही कोई भी जगह जाऊंगा, कोई अनभिज्ञ लोग हैं तो वहां सर्वज्ञ की बात पहले उठाता हूं, और लघु सिद्धांत प्रवेशिका की शुरू में हम पहले सर्वज्ञ का स्वरूप को ही समझने की कोशिश करते, तो वो एक बात बात बैठ गई तो सामने वाले के 10 में से 7 आर्गुमेंट बंद हो जाते हैं, क्योंकि अंदर मालूम नहीं ना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कि सर्वज्ञ अगर वितरागी है तो फिर उसको विश्व बनाने का राग नहीं है, खलास। ये अलंकार कपड़े आदि जो पहनते हैं वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्यों राग नहीं है ना। तो यानी देखो कितनी मतलब 50% जो खोटी खोटी अपनी मती कल्पना थी वो सब हट जाती। अभी आपको बताया होगा इसने कि हम शादी करके पूना गए थे, तो हाँ मैं तो गणपति के मंदिर में गया था, मैं पीछे देखता हूँ तो दिखती नहीं किधर, तो क्या बात है, क्योंकि हम तो हमारे मधु जोशी ब्राह्मण के साथ छोटे से बड़े हुए ना, तो वो गणपति को नमस्कार करे तो अपन भी करें। तब तो चौड़ी छाती थी कि सब हमारे लिए एक है, जब पता लगा ये मूर्खता है भाई, तूने देव और कुदेव में अदेव में कभी डिफरेंशिएशन करने की सोची नहीं। आप क्या करते मुझे मालूम, मैं तो मेरी बात खुली बताता हूँ, क्योंकि अभी वो पर्याय टल गई ना, और इस पर्याय में तो दोबारा ऐसा प्रसंग नहीं आएगा ऐसा लगता तो है। तो सर्वज्ञ जे छे ये धर्मनु मूल छे, ये बात से शुरुआत करते हैं। हमको लगा था कि अभी यहाँ 17 गाथा में तो 11वीं भावना पूरी की, अभी आगे 400 पन्ने जाने हैं, तो वो धर्म भावना में 400 लगे। एक भावना इतनी बड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जो कार्तिकेय स्वामी को भी इतनी, जिसको हम कहते ना वाली लागी। देखेंगे अभी, हम तो अभी पढ़नी है ना। चलो
पढ़ना है।
हाँ जरूर।
गाथा 302 आगळ धर्मानुप्रेक्षानु निरूपण करे छे, यानी यहाँ से धर्मानुप्रेक्षा चालू होती, 12वीं अनुप्रेक्षा। त्यां धर्मनु मूल सर्वज्ञ देव छे तेने प्रकट करे छे। धर्म क्या है बाद में बताएंगे, पहले उसका मूल सर्वज्ञ है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। यह जानाति प्रत्यक्षम् त्रिकालगुणपर्यायैः संयुक्तम् लोकालोकम् सकलम् सह सर्वज्ञः भवेत् देवः। अब यहाँ सर्वज्ञ क्या है, उनका स्वरूप कैसा है, तो उनके ज्ञान के द्वारा यहाँ बताया। केवल ज्ञानी क्या क्या जानता है सर्वज्ञ, तो यह जानाति जो जानते हैं, कैसे प्रत्यक्ष अत्यंत स्पष्ट और बिना किसी वहाँ जो कोई इंद्रिय प्रकाश आदि का निमित्त नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तो स्पष्ट प्रत्यक्ष जानते हैं, आत्म प्रदेशों के द्वारा डायरेक्ट जानते हैं। यह जानाति प्रत्यक्षम, उसका विषय क्या है, त्रिकाल गुण पर्याय ही संयुक्तम लोकालोकम सकलम, संपूर्ण लोकालोक, लोक भी और अलोक भी, क्योंकि 6 द्रव्य लेंगे तो उसमें आकाश द्रव्य पूरा लेना है ना, क्या लोक इतना ही लेना है, पूरा लेना है आकाश, तो सभी द्रव्यों को कहो या लोकालोक को कहो एक ही बात है। वो लोकालोक कैसा है, संपूर्ण लोकालोक, और वह कैसा है, त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों से युक्त है। गुण तो त्रिकालवर्ती है ही है, तो उसके प्रत्येक गुण की हर समय की जो पर्याय है, कहाँ कब से कब तक की, अनादि से लेकर अनंत काल, एक एक पर्याय भिन्न भिन्न जानेंगे, भिन्न भिन्न जानेंगे पर एट अ टाइम जानेंगे, जिसको कहते युगपत। युगपत भी जानेंगे और इस पर्याय से ये पर्याय भिन्न है उसको भी जानेंगे। तो ये है केवल ज्ञान का स्वरूप, सर्वज्ञ का स्वरूप। सह सर्वज्ञ भवेत् देवः, वो सर्वज्ञ ही देव है, देव होगा नहीं, देव है। देव किसको कहेंगे, जो इस तरह से जो सर्वज्ञ भगवान है उनको हम देव कहेंगे। अन्य मति देव को क्या मानते हैं, जो सबका भला करे, भक्तों का रक्षण करे, सबका पाप पुण्य का हिसाब रखे, वो कर्म का फल दे, वो भगवान है। अब यहाँ अर्थ देखते हैं। त्रिकाल गोचर समस्त गुण पर्यायों सहित संपूर्ण लोक अलोक ने जे प्रत्यक्ष जाने, जाने छे ते सर्वज्ञ देव छे। अभी समय सार में बात हो रही ना, अपने ही क्षेत्र में रहकर केवल ज्ञान कितना बड़ा है सब जानता है, जानता सब है, उसका आकार कितना बड़ा है सब जानता है, तो लोक अलोक में फैला हुआ होगा कि नहीं, जैसे सूरज की किरणें सर्वत्र फैलती है। हाँ कितना है, हाँ असंख्यात प्रदेश। जो आत्मा का आकार है, क्षेत्र है, वही उसके गुणों का क्षेत्र है और वही उसके पर्यायों का क्षेत्र है। तो आत्मा का कितना है प्रदेश, कितने प्रदेशी है आत्मा, जीव कितने प्रदेशी है, भूल गए बोलो, असंख्यात प्रदेशी। आप कितने प्रदेशी हो, तो असंख्यात प्रदेशी है, तो पर्याय भी असंख्यात प्रदेशी है। तो मति ज्ञान की पर्याय बड़ी होगी कि केवल ज्ञान की, बोलो जय बेन, मति ज्ञान की पर्याय बड़ी होगी कि केवल ज्ञान की। हाँ पर्याय पर्याय होती, हमने क्षेत्र पूछा है। हाँ
क्या कहें, वही क्षेत्र होगा।
हाँ वही क्षेत्र है, क्योंकि जितना क्षेत्र एक पर्याय का उतना ही दूसरे ज्ञान गुण की पर्याय हो या दर्शन गुण की हो या सुख गुण की है। तो सुख तो हृदय में है ना, और ज्ञान है ब्रेन में। तो ये कहते हैं यहाँ जो पर्याय है, केवल ज्ञान रूपी पर्याय अपने स्व क्षेत्र में रहकर पूरे ही पर क्षेत्र में जितने पदार्थ है सबको जान लेते हैं। अपने को तो जानती जानती है, पूरे विश्व में लोकालोक बताए ना, सभी द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ युगपत प्रत्यक्ष जो जाने स्पष्ट, उसको यहाँ केवल ज्ञान कहते हैं, और वे ही सर्वज्ञ है। तो त्रिकाल गोचर समस्त गुण पर्यायों सहित संपूर्ण लोकालोक ने, संपूर्ण लोकालोक ने सभी द्रव्यों को उनके गुण पर्यायों सहित प्रत्यक्ष जो जानते हैं, युगपत जो जानते हैं, ते सर्वज्ञ देव छे। भावार्थ, आ लोक मां जीव द्रव्य अनंतानंत छे। अभी लोकालोक को जानते तो लोक में क्या क्या है उसको बता रहे, तो जीव द्रव्य अनंतानंत है, तेनाथी अनंतानंत गुणा पुद्गल द्रव्यो छे। ये बात बहुत बार यहाँ ली है, अनंतानंत गुणा ने क्या, उसके लिए हमने द्विरूप वर्ग धारा भी बताई थी। वो क्या होती है, द्विरूप यानी दो, उसका वर्ग चार, तो उससे शुरू करेंगे। तो पहला स्थान है, पहला फर्स्ट जो है संख्या वो चार, आगे की संख्या उसका वर्ग 16, उसके आगे उसका वर्ग 256 तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर 65536, पांचवे छठे ऐसा करते जाओ। तो ये दो संख्या है फिर भी इतनी बड़ी होती है, चार पांच वर्ग स्थानों में। तो यहाँ मूल में किसको रखना, दो के बदले जीव की जो अनंतानंत संख्या है उसको रखेंगे दो के बदले, उसका एक बार वर्ग करो, उस वर्ग का वर्ग, फिर वर्ग का वर्ग, कितने बार वो भी अनंत अनंत बार करो, तो जो संख्या आएगी वो है पुद्गल की संख्या। तो कहते जीव द्रव्य अनंत अनंत छे, तेनाथी अनंत अनंत गुणा पुद्गल द्रव्यो छे। अब मेरा प्रश्न है, पुद्गल द्रव्यों से काल द्रव्य कितने गुणा होगा या नहीं होगा, काल द्रव्यों की संख्या कितनी है, हाँ लोक प्रमाण संख्या जो हम याद करते हैं ना, पुद्गलों से काल ज्यादा है, वो समयों को गिनते हैं। तीन काल के समय अलग है, वो तो पर्याय है, और ये काल द्रव्य अलग है। तो यहाँ क्या कहते हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत गुणा, एक आकाश, एक एक लिखा है क्योंकि हमें तीन बातें बताने, एक एक आकाश धर्म अने अधर्म द्रव्य तथा असंख्यात कालाणु द्रव्यो छे। कितने असंख्यात है, तो लोक में जितने प्रदेश है आकाश के, उस एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। देखो लोक के एक एक प्रदेश पर पुद्गल भी है, परंतु लोक के एक एक प्रदेश पर कितने पुद्गल है, क्या पूछा, मैंने पूछा है लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर पुद्गल कितने हैं, परमाणु लो स्कंद लो अनंत अनंत है। लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश है और अभी हमने पुद्गल कितने देखे, अनंत अनंत, वो सारे असंख्यात प्रदेशों में समेटे हुए हैं।
आपका कहना ऐसा है कि एक आकाश के प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु है, तो हमें इनका अगला प्रश्न ये है कि एक आकाश के प्रदेश पर काल द्रव्य कितने हैं? एक, हाँ बहुत अच्छा,
हाँ पहले बताओगे। हाँ, एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु है। लोकाकाशनी पार एटले आसपास अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य छे ते अलोक छे। आसपास क्यों लिखा?
आसपास नहीं, पार यानी बियॉन्ड दैट।
हाँ, लोकाकाशनी बार,
आसपास का अर्थ बियॉन्ड होता
है। ये पूरा आजूबाजू, अच्छा आजूबाजू,
हाँ,
यानी उसकी जशो दिशाओं में अनंत 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 जो पूरा आकाश है, लोकाकाश और अलोकाकाश मिलकर पूरा आकाश द्रव्य है, तो वह अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य छे ते अलोक छे, ते सर्व द्रव्यों नो अनंत समय रूप भूतकाल। क्या कहते हैं, सभी द्रव्यों का भूतकाल कितना गया है अभी तक? अनंत समय गया है, तो अनंत समय रूप भूतकाल अने तेनाथी अनंत गुणा समय रूप भविष्यकाल। किसी भी अभी आज के बाद अनंत काल के बाद भी देखो तो भी क्या कहेंगे, भूतकाल जो है वो अनंत है और आने वाला जो है वो उससे भी अनंत गुणा है एट एनी गिवन पॉइंट। इसका अर्थ क्या है कि अनादि यानी जिसको कोई बिगिनिंग ही नहीं है, फिर भी जितना बीत गया है आने वाला तो और उससे ज्यादा है, तो उसको कभी एंड है ही नहीं है। तो ये सभी द्रव्यों की पोजीशन है, क्योंकि एक समय में एक पर्याय होती है द्रव्य की, तो प्रत्येक द्रव्य कितना लंबा चौड़ा ऐसा फैला हुआ है अनादि से अनंत काल तक। तो जितने तीन काल के पर्याय है उतने प्रत्येक द्रव्य की एक एक समय की पर्याय गिनेंगे तो उतनी ही है। इसलिए कहते यहां पर द्रव्योनो अनंत समय रूप भूतकाल अने तेनाथी अनंत गुणा समय रूप भविष्यकाल छे, ते कालना समय समयवर्ती एक एक द्रव्यना अनंत अनंत पर्याय छे। एक एक द्रव्यना अनंत पर्याय कैसे? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और वो प्रत्येक गुण की अपने अपने एक एक समय की अपनी अपनी पर्याय है। ते बधाय द्रव्य पर्यायों ने युगपत एटले एक साथे एक समय मा प्रत्यक्ष स्पष्ट भिन्न भिन्न और जेम छे तेम। क्या कहा, कितनी कंडीशंस लगाई? पहले हमने सभी द्रव्य कितने हैं उसको देखा है और प्रत्येक द्रव्य कहां से कहां तक फैला है, तो अनादि से अनंत काल तक, तो उसका भूतकाल भी अनंत है और भविष्यकाल उससे भी अनंत गुणा है और प्रत्येक समय में एक एक द्रव्य में अनंत पर्याय एक एक गुण की अगर देते हैं। तो अभी उन सभी पर्यायों को कौन सी, वर्तमान की तो है ही है, अनादि से अनंत काल तक के प्रत्येक समय के प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों की सभी पर्यायों को युगपद एक साथ प्रत्यक्ष स्पष्ट जो जानते हैं और भिन्न भिन्न भी जानते हैं। एक साथ तो जानते ही है, परंतु एक साथ जाना तो सबको मिलकर जाना ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये एक पर्याय ये उससे भिन्न है ये उन्होंने जाना है। उस प्रत्येक पर्याय में जो अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसकी जो प्रकट शक्ति उसको अंशों में गिनेंगे उसको भी वो भिन्न भिन्न जानते हैं। तो जेम छे तेम हम भी जानते, पर जेम छे तेम जाने जैसे कि नहीं, ये जरा जो तो उसमें कितनी कितनी विपरीतता होती है। अज्ञानी जीवों की तो स्वरूप विपरीतता मालूम है, तीन विपरीतता कौन कौन सी, हाँ स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। तो कहते जेम छे तेम जेनु ज्ञान जाने छे તે સર્વજ્ઞ દેવ છે, એ જ દેવ છે. ગેપ ચાહીએ, એજ મેં. એને વહી દેવ હૈ ઉન્હીં કો હમ દેવ કહેંગે. યહાં દેવગતિ વાલે દેવોં કી બાત નહીં હૈ. ઈશ્વર જિસકો હમ કહેંગે, પરમાત્મા ભગવાન જિનકો કહેતે હૈ, વો સર્વજ્ઞ કો હી હમ ભગવાન કહેંગે. ક્યા અકેલે સર્વજ્ઞ કો કા વિતરાગતા કો ક્યો નહીં યાદ કિયા? મેં એસા પ્રશ્ન પૂછ રહી હું. મેં યહાં કહા જો સર્વજ્ઞ હૈ વહી દેવ હૈ, તો વિતરાગ હૈ ઉસકો ક્યો નહીં કહા યહાં પર? હા બોલો. હા વિતરાગ, પૂર્ણ વિતરાગતા કે બિના સર્વજ્ઞતા હોગી નહીં. જો સર્વજ્ઞ હૈ વો ઓલરેડી પૂર્ણ વિતરાગ હૈ હી.
એસે ભી કોઈ જીવ હૈ કે જો સર્વજ્ઞ નહીં હૈ લેકિન પરિપૂર્ણ વિતરાગ હૈ, ઉનકો દેવ નહીં કહેંગે. 11વે 12વે ગુણસ્થાન વર્ષી જો જીવ હૈ વિતરાગી હૈ, લેકિન ઉનકો સર્વજ્ઞ નહીં કહેંગે. લેકિન સર્વજ્ઞ કહેતે હી ઉસમે વિતરાગતા સાથ મેં હૈ.
આપ ડોક્ટર કે પાસ જાતે હો ના, વહાં લિખા MD, તો ઉસકે પહેલે MBBS ક્યો નહીં લિખા? MD વાલે MBBS નહીં લિખતે, વો હુએ ભી ના આગે કા હોતે નહીં હૈ. તો MD હૈ તો MBBS સહી હૈ ના? પરંતુ જો MBBS વો MBBS લિખેગા, ક્યોંકિ ઉસને ભી MD નહીં કિયે હૈ. તો યહાં ક્યા કહેતે હૈ, જો સર્વજ્ઞ હૈ વહી દેવ હૈ, બાકી બીજાને દેવ કહેવામાં આવે છે તે કહેવા માત્ર છે. અન્ય મતિયોંકી જો દેવ સંબંધી જો કલ્પના હી હૈ, વો બસ કથન માત્ર હૈ. એસી કોઈ વ્યક્તિ હિ નહીં અસ્તિત્વ મેં. અહીં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જે ધર્મનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવશે. અભી તો ધર્મ કા સ્વરૂપ નહીં બતાયા, ધર્મ કે મૂળ મેં સર્વજ્ઞ કી બાત પહેલે ઉઠાઈ હૈ. તો ધર્મનું સ્વરૂપ જે કહેવામાં આવશે તે ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઇન્દ્રિય ગોચર નથી પણ અતિન્દ્રિય છે. ઇન્દ્રિય ગોચર એને ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જો જાનને મેં આતે હૈ ઉસકો ઇન્દ્રિય ગોચર કહેતે હૈ. ઓર અતિ ઇન્દ્રિય કા અર્થ ક્યા હૈ? ઇન્દ્રિયો સે પાર. જાનને વાલા તો આત્મા હૈ પણ અતિ ઇન્દ્રિય છે. અને જેનું ફળ સ્વર્ગ મોક્ષ છે તે પણ અતિ ઇન્દ્રિય છે. ક્યા કહેતે હૈ? ધર્મનું સ્વરૂપ ભી અતિન્દ્રિય હૈ ઓર જિસકા ફલ સ્વર્ગ મોક્ષ હૈ એસા ધર્મ ભી વો અતિન્દ્રિય હૈ. છદ્મસ્થને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે તે પરોક્ષ છે. હમને દેખે જ્ઞાન કે દો ભેદ, એક પરોક્ષ ઓર એક પ્રત્યક્ષ. તો સૂત્ર હૈ તત્વાર સૂત્ર મેં પરોક્ષ કે બદલે ક્યાં લિખા હૈ? આદ્ય, હા આદ્ય પરોક્ષમ, એને આદ્ય કે દો જો જ્ઞાન હૈ મતિ ઓર શ્રુત વો પરોક્ષ જ્ઞાન હૈ. ઓર જો આગે કે તીન હૈ વો પ્રત્યક્ષ હૈ. કોણ સે આગે કે તીન? બહુ અચ્છા, અવધિ જ્ઞાન, મનપરે જ્ઞાન ઓર કેવલ જ્ઞાન. ઉસમે કેવલ જ્ઞાન હૈ વો પૂર્ણ પ્રત્યક્ષ હૈ ઓર અવધિ મનપરે વો એક દેશ પ્રત્યક્ષ યા વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ કહેતે હૈ ઉસકો. તો છદ્મસ્થ નહીં, છદ્મસ્થ કિસકો કહેના જાય બેન? આપકો પતા હૈ છદ્મસ્થ કિસકો? હા જિસકો કેવલ જ્ઞાન નહીં, યાની અલ્પજ્ઞ. તો છદ્મસ્થ નામ કૈસા તૈયાર હુઆ? હા છદ્મ એને આવરણ, સ્થ એને ઉસમે જો હૈ રહેતા હૈ. જૈસે ગ્રહસ્થ કિસકો કહેતે હૈ? ગ્રહ મેં રહેતા હૈ. તો એસે છદ્મસ્થ ક્યા આવરણ સહિત જો રહેતા હૈ, યાની જિસકો જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ હૈ ભી ઉદય મેં, સત્તા મેં ઓર ઉદય મેં, તો ઉસકો કહેતે હૈ છદ્મસ્થ. જો સર્વજ્ઞ નહીં હૈ, યાની જો અલ્પજ્ઞ હૈ, તો છદ્મસ્થ ને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે તે પરોક્ષ છે. એ જ્ઞાન ગોચર નથી કે તે સર્વ પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ દેખે તથા ધર્મનું સ્વરૂપ પણ પ્રત્યક્ષ દેખે. ક્યા કહેતે? એ જો પરોક્ષ જ્ઞાન કે દ્વારા सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, देख यानी जान नहीं सकता। जब देखना ऐसा लिखा है वो तो जानने के अर्थ में आता है। तो इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ये सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है, तथा धर्मानुस्वरूपण प्रत्यक्ष देखे ऐसा वो नहीं है। ये ज्ञान गोचन दिने, ये ज्ञान में ये जानने में नहीं आता है कि वो धर्म का स्वरूप प्रत्यक्ष देख सके, ऐसी इस ज्ञान की योग्यता नहीं है। तो इसके लिए अभी क्या उपाय है? देखो, जो अभी सर्वज्ञ नहीं हुआ है तो सर्वज्ञ कौन होगा? जो पूर्ण वितरागी होगा। वितरागी कौन होगा? तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो आगे चलकर वितरागी होगा। सम्यक दृष्टि होने के लिए क्या आवश्यक कंडीशन है? यानी धर्म प्रकट करने के लिए तो धर्म का स्वरूप जानना चाहिए। तो धर्म का स्वरूप किसको जानना चाहिए? मिथ्या दृष्टि को। तो मिथ्या दृष्टि तो अल्पज्ञ है, इंद्रिय ज्ञान है, उसी के क्या बात, बारहवें गुणस्थान तक इंद्रिय ज्ञान है। तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में उसको धर्म का स्वरूप जानना है, वो इंद्रिय ज्ञान से तो उसको प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। ना धर्म को प्रत्यक्ष जान रहा है, ना धर्म के स्वरूप को। तो उसके लिए क्या उपाय है कि वो धर्म का स्वरूप जाने? तो उसके पास एक परोक्ष ज्ञान है, उसके द्वारा वो जान सकता है। यानी कोई बताएगा प्रत्यक्ष जानकर, तो वो बताए हुए को वो जान सकता है। ये उपाय है ना उसके पास। तो यहां कहते हैं, एटला माटे ए धर्मनु स्वरूप श्री सर्वज्ञ देवना वचन थी ज प्रमाण छे। क्या कहा? हम आप सब परोक्ष ज्ञानी है, परोक्ष ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा हम धर्म को या धर्म के स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। तो उपाय क्या है? हम परोक्ष जान सकते हैं, जिसको हम कहेंगे आगम परोक्ष। आगम के द्वारा, आगम क्या है? सर्वज्ञ भगवान की वाणी जो अभी तक चली आ रही है। तो सर्वज्ञ के उपदेश क्यों? उनका उपदेश कार्यकारी है, वे प्रत्यक्ष ज्ञानी है। त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं, और पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ है, राग द्वेष है ही नहीं है। जैसा है वैसा जानते भी है और वैसा ही कहते हैं। ऐसा ही नहीं जाने कुछ और तो बताए कुछ, क्योंकि हम तो आप मायाचारी है सब, जानेंगे तो भी कुछ छिपा के बताएंगे ना, कि अपना ट्रेड सीक्रेट सबको बताएंगे? क्यों मिलिंद भाई, नहीं बताएंगे हा? तो यहाँ तो उन्हीं का उपदेश कार्यकारी, इसीलिए उनको धर्म का मूल कहा है। यहाँ कहे ना कि सर्वज्ञ को जानना क्यों जरूरी है। तो इतला माटे धर्मनु स्वरूप श्री सर्वज्ञ देवना वचन थी ज प्रमाण छे। यानी अन्य किसी के बताई हुई बात नहीं, हम भी जो जानते हैं शास्त्र में से, सर्व गुरुओं की वाणी है, लिखी हुई भी है, वो सर्वज्ञ के उपदेश के अनुसार चली आ रही है। तो ये सर्वज्ञ की वाणी है, हम आप किसकी नहीं है ये बात। अन्य छद्मस्थनु कहलू प्रमाण नति, किसी छद्मस्थ ने अपनी मति कल्पना से बनाई हुई बातें प्रमाण नहीं है, परंतु सर्वज्ञना वचननी परंपरा, वचन थी चाहिए क्या? नहीं, वचन नी परंपरा, हाँ वचन की परंपरा ऐसा लेना। सर्वज्ञनी वचन, सर्वज्ञना वचन नी परंपरा, परंपरा का अर्थ होता है वही आगे चली, हाँ चल रहा है। यानी सर्वज्ञ की बात गणधरों ने सुनी, फिर उन्होंने ग्रंथों की रचना की, फिर वहां तो मौखिक चल रहा था, उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों ने सुना, ग्रहण किया, धारण किया, फिर आगे के आचार्यों को, उनके शिष्यों को पढ़ाया। तो ये जो वही की वही बात आगे रिपीट होते होते आई है, उसको परंपरा कहा। ये किसकी परंपरा है? सर्वज्ञ के वचन के अनुसार ये परंपरा चल रही है। तो सर्वज्ञ ना वचन नी परंपरा पूर्वक छद्मस्त कहे ते प्रमाण छे। देखो क्या कहा है, कोई अन्य मतियों के कथन के अनुसार कोई वक्ता कहे तो वो प्रमाण नहीं है, परंतु सर्वज्ञ के वचन की जो परंपरा चली आ रही है, वो छद्मस्थ भी उसको कहता है तो वो प्रमाण है, वो सत्य है। तेथी धर्म ना स्वरूप कथन मा मूल कारण रूप सर्वज्ञ नु अहीं स्थापन करियूं। देखो अभी तो समय हो गया है, कोई भी शास्त्र पढ़ने को शुरुआत करते हैं तो वहां इसी शुरुआत में कथन करने की पद्धति है कि इस ग्रंथ के मूल कर्ता श्री सर्वज्ञ भगवान है, उसके उत्तर कर्ता फिर गणधर है, फिर उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों ने इनके ग्रंथों की रचना की है और ये परंपरा से चले, ये पूरा ऐसा संस्कृत कहने की पद्धति आज भी चालू है। इसकी बात कल करेंगे और अधिक।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकानो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अमोल भाई।